ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेर भगवती श्लोके भक्तिर भवतीर नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय का 16वां श्लोक है। न तथा हि अघवान राजन पुएत तपादिभि यथा कृष्णर्पिता प्राणास तत्पुरुष निषेवया। न नहीं तथा उसी तरह ही निश्चय ही अघवान पाप कर्मों से पूर्ण मनुष्य राजन हे राजा पुएत पवित्र हो सकता है तप आदि भी तपस्या ब्रह्मचर्य तथा अन्य संस्कारों को संपन्न करने से यथा जिस तरह कृष्ण अर्पित प्राण भक्त जिसका जीवन कृष्ण भावना भावित हो तत्पुरुष निसेवया कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपना जीवन लगाने से। अनुवाद और तात्पर्य शिलाभ है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद हे राजन यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तात्पर्य तत्पुरुष द्योतक है कृष्ण भावनामृत के प्रचारक का यथा गुरु का। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे के। प्रामाणिक गुरु अर्थात आदर्श वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जिसका माया के पाश से उद्धार हो सके। यही भाव अन्य अनेक स्थानों पर भी व्यक्त हुआ है। श्रीमद् भागवत 5.5.2 में कहा गया है महत् सेवाम द्वारम अहुरुक्ते। यदि कोई व्यक्ति माया के पाश से मुक्ति चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त महात्मा की संगति करनी चाहिए। महात्मा वह है जो 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि भगवद गीता 9.13 में कृष्ण कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। इस तरह महात्मा का लक्षण यह है कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य व्यस्तता नहीं रहती। पाप फलों से मुक्त होने आदि कृष्ण भावनामृत को जागृत करने तथा कृष्ण प्रेम करने में प्रशिक्षित होने के लिए मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। यह महात्मा सेवा का फल है। निस्संदेह यदि कोई शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है तो उसके पाप में जीवन के सारे फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की आवश्यकता पापों के तुच्छ ढेर को नष्ट करने हेतु ही नहीं अपितु कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए भी पड़ती है। जिस तरह सूर्य प्रकाश की पहली झलक पाते ही कोहरा दूर हो जाता है, उसी तरह शुद्ध भक्त की सेवा प्रारंभ करते ही उसके पाप फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कृष्णार्पित प्राण शब्द उस भक्त का द्योतक है जो अपना जीवन कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है, न कि अपने नारकीय जीवन के मार्ग से बचाए जाने के लिए। एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ है कि वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग ही भक्ति का जीवन एवं प्राण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, भागवत 6:17-28। ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता। 6:17-28 ही है ना ये। एक मोक्ष की ओर जाने उच्च लोकों का मार्ग है और दूसरा नरक लोकों में जाने का है, किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वह निडर रहता है। वह जहां भी रहे एकमात्र कृष्ण का स्मरण करना चाहता है। ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती, वह तो केवल कृष्ण की सेवा करने में लीन रहता है। जब भक्त को नारकीय दशा में डाल दिया जाता है तो वह उसे कृष्ण की कृपा मानता है। तत्तेनुकंपां सुशमिक्षमाण, भागवत 10:14-8। वह विरोध नहीं करता कि ओह, मैं कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे इस कष्ट में क्यों रखा गया। उल्टे वह सोचता है कि यह कृष्ण की कृपा है। ऐसा मनोभाव उसी भक्त के लिए संभव है जो कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने को लगाता है। सफलता का यही रहस्य है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो इस श्लोक में बताया गया है न तथा ही अघवान राजन। अघवान का क्या अर्थ होता है? पाप कर्मों से पूर्ण मनुष्य। अघवान के ठीक विपरीत है भगवान। तो जो भगवान है, भगवान कभी कभी अपने कृष्ण के भक्तों को भी कह दिया जाता है। नारद मुनि को भगवान कह दिया जाता है, शिव जी को कभी कभी कह देते हैं, और ब्रह्मा जी को कह देते हैं कभी कभी। प्रभुपाद जी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट को भी भगवान कह देते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो भगवान के भक्तों को भी भगवान कह दिया जाता है, जिनके अंदर पाप का बिल्कुल भी लेश मात्र नहीं रहते हैं। और अघवान किसे कहते हैं? जो अनेकों प्रकार के पापों से भरा हुआ है, उसे कहते हैं अघवान। कृष्ण के भक्तों को भगवान इसलिए नहीं कहते हैं, कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण की तरह ही भगवान है। वो भगवान के स्तर के हैं, वो बिल्कुल भगवान नहीं है। भगवान जैसे 64 गुणों से परिपूर्ण है वैसे नहीं है। भक्त के अंदर तो ज्यादा ज्यादा 50 गुण आ सकते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि प्रामाणिक भक्त की सेवा में वह अघवान लग जाता है और इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु से क्या सीखता है? कैसे कृष्ण के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो इसी अध्याय में हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संवाद से कि किस प्रकार गुरु के प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए और किस प्रकार गुरु को भी शिष्य के प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि गुरु ने जो भी कहा उसके हाँ में हाँ मिलाओ, ऐसा इस अध्याय में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पंचम स्कंद में अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं और वो नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय में करुणा जाग जाती है। वो सोचते हैं कि कैसे इन सभी पापों से जीव मुक्त हो सकता है, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला जो उत्तर देते हैं वो सुखदेव गोस्वामी धर्मशास्त्र में मनु संहिता में बताए हुए 80 धर्मशास्त्र हैं, उसके आधार पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए इससे पहले कि शरीर जो है जीर्ण नहीं होता है। शरीर ठीक ठाक अवस्था में है तो अनेकों प्रकार के प्रायश्चित कर लेने चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या हाँ में हाँ मिला दिया? हाँ में हाँ नहीं मिलाया उन्होंने, उन्होंने सीधे नकार दिया। वो बोले कि ऐसा कैसे संभव है? वो बोलते ये तो हाथी के शौच की तरह है। हाथी जैसे जाता है वो जल से अपने आप को बहुत अच्छे से स्वच्छ करता है और उसके बाद फिर से बाहर आकर के मिट्टी बालू वगैरह सब फेंक लेता है अपने ऊपर। तो इस प्रकार से हाथी के शौच की तरह इसे संभव नहीं है। परीक्षित महाराज ने हाँ में हाँ नहीं मिला। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ये सुन करके प्रसन्न हुए। तो पहले उन्होंने कर्म मार्ग के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर उत्तर दिया, उसके बाद ज्ञान मार्ग बताते हैं। तपसा ब्रह्मचर्य ने समय ने चमय ने त्यागे ने सत्य शौच अभ्याम यमे ने निमय नवा, ये सभी बताते हैं। तो ये सभी ज्ञान मार्ग इधर बताते हैं। तो इसके बाद भी परीक्षित महाराज इसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इस बार कुछ कहते नहीं है। उनके हाव भाव को देख करके सुखदेव गोस्वामी समझ जाते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है इस उत्तर से, वो संतुष्ट नहीं है। और इसलिए आगे चल करके फिर वो बताते हैं केचित केवल्या भक्त वासुदेव परायण। फिर इस श्लोक में क्या बताया गया? वो केवल्या भक्ति कैसे सीखी जाए? केवल्या भक्ति है तो उसको सीखना भी जरूरी है, तो गुरु के पास जाकर के उसको सीखना होता है। तो गुरु के पास गुरु ऐसा नहीं है, कभी कभी गुरु परीक्षा भी लेते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे। और कभी कभी क्या होता है, गुरु जो है शुक्राचार्य की कैटेगरी के भी होते हैं, है ना। भली महाराज के बारे में भागवतम अष्टम स्कंद में लिखा हुआ है कि वो वेदों के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उनको समझ में आया कि आप गुरु की बात नहीं माननी है। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद इस संबंध में एक बड़ी सुंदर घटना सुनाते हैं। वो बोलते हैं एक बार एक जमींदार था और वो जमींदार का एक सेवक था। तो सेवक अनेकों प्रकार से जमींदार की चापलूसी करता था। चापलूसी करके वो किसी प्रकार से अपने इंद्र तृप्ति के लिए जमींदार से कुछ ना कुछ चाहता था। जमींदार जो कुछ भी बोलता था उसके हाँ में हाँ ही मिलाता था वो। तो एक बार जमींदार और ये सेवक, चापलूस सेवक बैठे थे एक साथ। तो जमींदार पूछ लेता है कि ये तुम आलू के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो सेवक बोलता है, सेवक दोनों हाथ जोड़ करके बोलता है, स्वामी जी मैं तो जरूर बोलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका विचार सुनना चाहता हूँ। आलू का क्या विचार है आपका? तो जो जमींदार है वो बोलते हैं, आलू अच्छा अच्छा सब्जी है। तो इससे पहले कि जमींदार और कुछ आगे बोलने के लिए करें, चापलूस उनको बीच में बोलना शुरू कर देता है, हाँ आलू कहाँ नहीं मिलते, आलू सभी जगह मिल जाता है, आलू सभी जगह मिल जाता है। आलू को आप राइस बनाते वक्त उबाल सकते हो, पानी में ऐसे अलग से उबाल सकते हो, आलू को आलू का भुजिया बना सकते हो, सब्जी तैयार कर सकते हो, आलू का भरता बना सकते हो, और कितना कितना स्वादिष्ट है, इससे स्वादिष्ट तो कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। जमींदार बोलते हैं, बोलते हाँ सही बात है बिल्कुल, आलू से न जाने कितनी बीमारियां होती है, मोटापा आता है, डायबिटीज आता है, और सभी बीमारियों की जड़ ये आलू ही है। तो ये सुनकर के जमींदार जो है बोलते ठीक है ठीक है, मुझे एक बात बताओ तुम बैगन के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो फिर से हाथ जोड़ करके बोलते हैं, स्वामी जी थोड़ा आप पहले बताएं, मैं आपका विचार सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। तो जमींदार बोलता है कि बैगन, बैगन अच्छा अच्छा व्यंजन है, अच्छा व्यंजन है, ये शरीर के लिए थोड़ा ठीक ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते हैं हाँ बैगन कितना स्वादिष्ट व्यंजन है, आप देखो इससे सुंदर सब्जी कहीं मिलेगा नहीं। बैगन का भरता बना सकते हो, बैगन को अनेकों प्रकार के सब्जी में डाल सकते हो, बैगन का चोखा चटनी सब कुछ बना सकते हो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन इसमें भी कुछ है समस्या, वो मुझे पसंद नहीं है। तो बोलते हैं कि हाँ ये बैगुन क्या है, ये बैगुन बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसको कहते हैं बैगुन। तो बोलते हैं कि अरे क्या बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं लगता, ऐसे करके बोलने लगते हैं। तो फिर इतने में जमींदार थोड़ा क्रोध में आ जाता है। तो बोलते हैं कि तुम्हारा खुद का कोई स्वाभिमान है कि नहीं, जब मैं आलू को अच्छा बोलता हूँ तुम आलू को अच्छा बोलते हो, जब मैं आलू को बुरा बोलता हूँ तुम आलू को बुरा बोलते हो, जब मैं बैगन को अच्छा बोलता हूँ तुम बैगन को अच्छा बोलते हो, जब मैं बैगन को बुरा बोलता हूँ तुम बैगन को बुरा बोलते हो, क्या ये? तो इस पे ये सुन करके जो सेवक है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, बोलते हैं स्वामी जी क्षमा करें, लेकिन मैं ना तो आलू का दास हूँ ना बैगन का दास हूँ, मैं हूँ आपका दास। महीने के अंत में मुझे तनख्वाह ये बैगन और आलू से नहीं मिलता है, मुझे तनख्वाह किससे मिलता है? आपसे मिलता है। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, आपको जो बुरा लगता है वो मुझे बुरा लगता है। तो श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद इसका तात्पर्य देते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी समझते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए जो परिकाष्ठा का सिद्धांत है कृष्ण प्रेम का, उसको स्थापित नहीं करते हैं और उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो भले ही कुछ भी सिद्धांत बोले और कोई दूसरे संप्रदाय में भी हो, शंकराचार्य में हो या कुछ भी हो जो भगवत प्रेम की ओर नहीं लेके सिद्धांत जाता है, वो सभी जितने भी हैं वो इस सिद्धांत तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो सभी इसी चापलूस की तरह हैं। वो लोग ना तो शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं, और ना ही चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। वो किसके अनुयायी हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा के अनुयायी हैं। उनको प्रतिष्ठा चाहिए, इंद्र तृप्ति इत्यादि चाहिए, बस इसी के लिए वो चापलूसी करते हैं। तो इस प्रकार के चापलूस से हट करके, जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में इसी अध्याय में देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे जब परीक्षित महाराज के मन में शंका हुई तो उन्होंने क्या किया, प्रश्न किया, उन्होंने सीधे नकार दिया सबसे पहले, उसके बाद भी क्या करते हैं वो ज्ञान मार्ग को भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब केवलिया भक्ति के बारे में बात करते हैं तब वो स्वीकार करते हैं। तो गुरु से बातें समझने के लिए हृदय में सरलता होनी चाहिए, मन में सरलता होनी चाहिए। सरल होंगे तभी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सरलता नहीं है तो मन में कुछ मन बाहर से भले ही हाँ में हाँ मिला दिया और मन में शंका बनी रहती है। श्री गौर गोविंद महाराज इसके संबंध में कुछ उदाहरण देते हैं सरलता को कैसे समझें, तो मैं उन उदाहरण को प्रस्तुत करता हूँ। तीन उदाहरण मैं पढ़ाऊँ उनका। एक तो ये कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री आ जाए स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर आ जाए नृत्य करने के लिए, और नृत्य करने के समय वो घूंघट डाल ले, ठीक है, घूंघट डाले तो महाराज बोलते हैं कि यही है कपटता। कैसे कपटता? पहले तो आई है परफॉर्मेंस देने के लिए, दिखाने के लिए आई है नृत्य वगैरह, और अब घूंघट डाल करके ड्रामा कर रही है कि बहुत ज़्यादा शर्म है उसके अंदर, लज्जा बहुत ज़्यादा है। दूसरा उदाहरण ऐसे है कि जैसे इस बलराम हॉल में मान लें प्रसाद हो रहा है और सर्विंग करने के लिए आते हैं, बगल वाला भक्त जो है वो खाली उसकी वो खाता है केवल दो चपाती, और जो एक दूसरा बैठा है वो खाता है कितना 8-9 रोटी खा लेते हैं, तो वो 2 रोटी खा करके हो गया उसका। अब इसने ऑलरेडी पहले से 4 रोटी खा लिया है। अब ये मन में सोच रहा है कि अगर मैं 4 रोटी से ज़्यादा मांग लूँ तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो सेवा सर्वर है वो क्या सोचेगा। तो मन में है इच्छा खाने की, लेकिन अब वो सोचता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए वो नहीं, 4 रोटी हो गया मेरा, भर गया मेरा पेट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कपटता, सरलता नहीं। एक उदाहरण ये देते हैं कि जैसे कोई शिक्षक अगर पढ़ा रहा है क्लासरूम में और वो प्रश्न का वो कुछ बताता है, उसके बाद फिर पूछता है, तो सभी को समझ में आ गया, तो सभी लोग बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो शिक्षक को पता है ये जो एक बच्चा है इसको समझ में कभी नहीं आता, उसको पकड़ करके पूछता है तुमको आ गया समझ में, वो बोलता है कि हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया। तो उसको समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो इसी को कहते हैं क्या, कपटता। तो भक्त को जो है या जिस किसी को जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है, उसको सरल होना चाहिए। निष्कपट भाव से जब सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे और समझ जाएंगे तो कृष्ण में मन लग जाएगा। सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस, यहा है तो कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चित्त में कोई आलस नहीं करना चाहिए, ये समझ करके ये सिद्धांत है अरे इसको क्यों समझें, हमारी गाड़ी जैसे चलती है चलते रहें। तो ये सभी सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत को समझने में बिल्कुल बिल्कुल सरल होना चाहिए, और इससे क्या होगा कृष्ण में मन लग जाएगा। तो कृष्ण में मन जब लग जाएगा तो उससे होगा क्या, कृष्ण में मन लग जाएगा तो ये सभी पाप तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। पाप को नष्ट करने के लिए पृथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमको और भी देखने के लिए मिलता है, जैसे आप देखिए ये नारद मुनि कहते हैं जब उन्होंने गुरु की सेवा की तो फिर उससे क्या हुआ, गुरु की सेवा की तो कृष्ण के कथा में कृष्ण के नाम इत्यादि में उनकी रुचि बढ़ गई, है ना। नारद मुनि कहते हैं कि मैं जब उन भक्ति वेदांतों की सेवा कर रहा था तो फिर मैं सुना उनको कृष्ण चर्चा करते हुए, जब उन्होंने कृष्ण चर्चा किया और इस प्रकार से मेरी भी रुचि उसी में जाग गई जिसमें उनकी रुचि थी। तत्रान महम कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा शृण्व मनोहरा तह श्रद्धया मेनु पदम विष्णुवत प्रिय शवसंग ममा बहुत रुचि। उनके संग में मैंने सुना वो क्या चर्चा कर रहे हैं तो फिर वही उसी में रुचि, कृष्ण कथा में कृष्ण नाम में रुचि मेरी भी जाग गई, ममा बहुत रुचि मेरी भी रुचि उसी में जाग गई। तो ये जो संग हम करते हैं इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रपात जी यहां पे लिखते हैं महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेश। महत की सेवा करने से क्या होता है, स्वर्ग मुक्ति का द्वार खुल जाता है। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेश और तमो द्वारम योशिताम संगी संगम। कोई योषित या योषित संगी का संग करता है तो उससे क्या होता है, नर का द्वार खुल जाता है। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य व सूर्य साधु, इस प्रकार के भक्त जो होते क्या कभी क्रोध नहीं करते, विमन्य और वो सभी के प्रति एक समान होते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करने पे क्या होगा, हमको वो सिद्धांत सही सही पता चल जाएगा। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे भक्त को समझे कैसे, क्या तरीका है समझने का, कोई बता सकते हैं? ऐसे भक्तों को समझने का केवल एकमात्र तरीका यह है कि कृष्ण की शरण ली जाए, कृष्ण से प्रार्थना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर रहता है अनन्य भक्त को समझने के लिए, कृष्ण के शुद्ध भक्त को समझने के लिए, तो वो समझ नहीं पाएगा। केवल कृष्ण ही जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे आचार्यगण यशोदा ये पूतना के बारे में बताते हैं कि पूतना जब ब्रज में आई, पूतना जो ढोंगी गुरु का प्रतिनिधित्व करती है, तो उनको यशोदा माई और रोहिणी माई भी नहीं समझ पाए। वो सोचे कि साक्षात लक्ष्मी यहां पे आई है और उनको कृष्ण के पास जाने दिया उन्होंने। हाँ, तो यशोदा माई और रोहिणी माई भी नहीं समझ पाए, समझे कौन, कृष्ण समझे। कृष्ण को पता है कि ये जो है वेश बदल करके आई है और इसका उद्देश्य मुझको मारना, कृष्ण समझ गए। इसीलिए अगर किसी साधु को समझना है जिसके अंदर सारे अच्छे गुण हो और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति हो, तो उसके लिए कृष्ण का ही सहारा लेना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सद्भक्त का दर्शन कराओ। अगर केवल साधु के लक्षण देखेंगे, सुशील साधव इत्यादि, तो ये तो मायावादियों में भी होते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण के अंदर भी होते हैं। दूसरे ही श्लोक में बताया, सदृचिनो ही हम लोग पंथाक्षेम कुतुभ है, सुशीला साधु यत्र नारायण नारायण परायण। दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं सुशीला साधु, मायावादी भी सुशील और साधव होते हैं। हाँ, लेकिन उनका जो पथ है वो कोई निश्चित नहीं है कि सही दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों का पथ है वो भय से मुक्त है। उनका पथ में, उनके पथ में शंका रहती है, पता नहीं इसका परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ये जो शौनक आदि ऋषि वो जब यज्ञ कर रहे थे पूरे जन कल्याण के लिए, तो फिर यज्ञ करने में उनको शंका आ रही थी, शरीर काला पड़ गया था, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो शंका में थे कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को ऊंचा आसन दिया, उनसे फिर भागवत का श्रवण किया। तो दूसरे लोगों का जो मार्ग है वो क्या है, शंकाओं से भरा रहता है। और ये लोग सुशील साधव भी हो सकते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं मायावादी गण भी, दूसरे श्लोक में बताया है यहां पे। मायावादी भले ही सुशीला साधव अच्छे आचरण वाले साधु पुरुष हो, ऐसे बताया हुआ है यहां पे। तो सुशील साधव होना ही केवल पर्याप्त नहीं है, सुशील साधव होने के बाद कैसे केवलया भक्ति की जाए इसको समझना और इसको करना बहुत जरूरी है। इसको करने के बाद ही जीव जो है वो पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण में उसका अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, तपस्या ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता है। ये सभी हालांकि सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि केवल ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करने से या गृहस्थ धर्म के भी अच्छे से पालन करने से व्यक्ति पापों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है, कृष्ण की कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती उसको, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है केवल इसी में लगे रहने से। महत सेवा यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं इसी के पहले वाले श्लोक में, जड़ भरत कहते हैं रहुगण से कि रहुगण है ततपसा न याति न चे जया निरूपनाथ ग्रहद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजुभिषेकम। हे महाराज रहुगण, तपस्या करके नहीं, रहुगण तपस्या ने अति नचे जया निरूपनाथ, गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करके नहीं, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करके नहीं, या गर्मी के दिनों में सूर्य के बीच में तपते सूर्य के में अपने आप को रख करके और चारों तरफ अग्नि लगा करके, ये सबसे नहीं, या ठंडी में जल के अंदर गोता लगा करके, ये सबसे भी नहीं। कृष्ण कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरण कमल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? महत सेवा से मिलते हैं। तो ये महत करते क्या है, जैसे कि इसके आगे वाले श्लोक में बताया और आगे वाले में कहा गया, वो महत का लक्षण क्या है। यत्र तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुत ग्रामे कथा विगात निषेव्य मानव अनुमोक्षर मतिम सतीम अच्छति वासुदेव। ये जो महत है वो क्या करते हैं, वो कभी भी ग्राम्य कथा नहीं करते। कौन सी कथा करते हैं? वो कृष्ण कथा करते हैं। और उनकी मति पूरी तरह से वासुदेव में सती हो गई है। मन में वासुदेव के अलावा, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं होता है। मतिम सतीम यच्छति वासुदेव। तो ये होता है महात्मा। ऐसे महात्मा की सेवा करनी चाहिए, ऐसे महात्मा को समझना चाहिए और समझने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, महात्मा को समझने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। मायावादी गण जो है उनके अंदर भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, नम्रता सहनशीलता ये सभी, लेकिन ये सभी जो है तटस्था लक्षण है। भक्ति करने में ये सभी मुख्य लक्षण नहीं है, ये सभी क्या है, गौण लक्षण है। तृणादपि सुनिश्चय न तरोपि सहिष्णु न अमान्य न मान्य न कीर्तनी सदा हरि। तो कोई नम्र है, कोई सहनशील है और दूसरों को सम्मान भी करता है और सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कीर्तनी सदा हरि है कि नहीं ये सब करने के बाद। हाँ, तृणादपि सुनिश्चय न तरोपि सहिष्णु न अमान्य मान्य न, इसके बाद कीर्तनी थोड़ा हरि नहीं होगा। कभी कभी कीर्तन कर लिए। भक्तिवर ठाकुर जैव धर्म के पहले अध्याय में लिखते हैं कि जो कभी कभी भगवान का नाम लेता है वो कनिष्ठ अधिकारी है, जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वो मध्यम अधिकारी है, जिसको देख करके दूसरे लोग कृष्ण का नाम लेने लगे वो क्या है, उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को कृष्ण के नाम के आधार पर बता दिया है हमारे आचार्य ने। तो जो सुशीला साधव, ये तो मैं दूसरे श्लोक में थोड़ा बोल रहा हूँ, इसका संबंध है यहाँ पे। मायावादी जन भी सुशील और साधव होते हैं। हमारे कमरे में एक भक्त हैं जिनका नाम है नंदन प्रभु। तो वो बताए कि इस्कॉन में आने के पहले वो गए वहाँ पे हरिद्वार में गए, और हरिद्वार में जा करके वो पूछे ये ऐसे तिलक वाले लोग कहाँ रहते हैं, ऐसे तिलक वाले। तो जब मायावादी था वो देखा तो फिर क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के बोलता है कि हे निकालो इसको इधर से बाहर। तो मायावादी क्रोध में आकर के बोल दिया ऐसे, निकाल दो इसको इधर से बाहर। लेकिन वही मायावादी अगर कोई ऐसा होता है जो बड़े प्रेम से बात करता, बिल्कुल क्रोधी नहीं होता, बहुत अच्छे सतर्क होता, प्रभु जी बोलते कि मैं हो सकता वहीं पर चला गया होता। इसीलिए बताया जाता है कि जो अभक्त होते हैं उनके अंदर कोई लक्षण नहीं होता है उनका, तथा यस्यास्ति भक्तिर भगवती सर्वरि गुणस्तत्र समासते सुरा। जो भक्तों के अंदर ही सारे लक्षण होते हैं, मायावादी के अंदर अगर इस तरह के लक्षण है भी तो उसको खींच करके किसी जीव को, जो अगर कृष्ण की भक्ति करने वाला है, जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसको वो हो सकता है मायावादी अपनी ओर खींच लें अपने तथाकथित ये गुणों से। तो इसीलिए जो साधु है वो उसको समझने का ये तरीका नहीं है कि खुद के बुद्धि से समझा जाए। साधु को खुद जो बुद्धि है, मन है, ये सभी क्या है, सब भौतिक है। जो शब्द निकलते हैं, जो मन में सोचते हैं, ये सभी जो है भौतिक है। बद्ध जीवा, जब तक जीवात्मा बद्ध है तब तक तीन गुणों से मिश्रित है ये। यद्यन्निरुक्तम वचसा निरूपितम, ऐसे करके श्लोक आता है भागवतम में, जिसमें बताया गया है कि जो भी शब्द निकलते, जो भी मन में चलता है, जो भी कुछ देखते हैं, वो सभी भौतिक ही तो है। और जब बद्ध जीव आत्मा है तो उसके बारे में जो कुछ भी करता है या बुद्धि से सोचता है वो सभी क्या है, भौतिक है। लेकिन जो गुरु होता है, जो साधु होता है, वो कैसा होता है, क्या वो तीनों गुणों के अंदर होता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठा होता है। तो जब वो तीनों गुणों से ऊपर उठा होता है तो जो तीनों गुणों से ऊपर उठा है, या तो भगवान का भक्त हो गया या स्वयं भगवान हो गए, तो उनको ये सभी भौतिक इंद्रियों से कैसे समझ सकते हैं, इन सभी से समझा नहीं जा सकता है। केवल एकमात्र तरीका यह है कि कृष्ण की शरण ली जाए, कृष्ण से प्रार्थना किया जाए। और जब कृष्ण फिर बताते हैं उसके बारे में, कृष्ण जब रिवील करते हैं, रिवील को क्या बोले, साक्षात्कार कराते हैं, तो फिर समझ जा, तब तब व्यक्ति को क्या चाहिए कि उनसे प्रश्न करें, उनकी सेवा करें। कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाश तत्व दर्शिना। गुरु ने तत्व को दर्शन कर रखा है, लेकिन गुरु क्या कराते हैं अपने शिष्य को? गुरु क्या कराते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं, ठीक है। परिप्रश्न ने सेवया, सेवा प्रश्न करते हुए सेवा करनी चाहिए नम्रतापूर्वक। तो प्रश्न करते हुए जब सेवा करेंगे, प्रश्न पूछ क्यों रहे आखिर? ऐसा ही यहां पे बताया हुआ है, उससे सीखना चाहिए। सीखने के लिए कि केवलिया भक्ति कैसे की जाए, इसके लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो गुरु से जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा? गीता के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब वो देखेगा कि मैं सभी जीवों में हूं और सभी जीव मुझ में है। और वो बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कभी भी जो मोह में नहीं पड़ेगा, माया में नहीं पड़ेगा। और इसके बाद फिर वो जब उस ज्ञान को अपने जीवन में अभ्यास में लाता है, फिर क्या होगा? वो उसी ज्ञान का आस्वादन करने लगता है, उस ज्ञान में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो जब उसकी रुचि उत्पन्न हो गई तो फिर रह क्या गया? तो भौतिक संसार तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। जब भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में रुचि उत्पन्न हो गई तो सांसारिक नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण और जो भी चीजें चलती हैं यहाँ पे लीला, तो तथाकथित लीला मध्य जीवात्माओं की, हाँ, तो वो सब जो यहाँ पे चलती है उसमें कैसे आकर्षण रह जाएगा? उसमें आकर्षण रहने का सवाल नहीं पैदा होता है। जहां तक भौतिक संसार है, इसके बारे में बताया गया है, इसकी चर्चा अगर कोई करता है तो क्या होता है? ये सीधे सीधे रिएक्ट करता है, मतलब कि वो सोचता है कि मैं ऐसा करके सुखी हो जाऊंगा, और लेकिन वो उसको करने के बाद सुखी होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। ततो भागवतम में नारद मुनि कहते हैं, ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षत पृथक दृशस्तत कृतरूप नाम भी नकर ही चित्त को आप चतुस्थिता मत लभेत वाता हतन और वास्पदम। मतलब कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को छोड़ करके कोई कुछ और भौतिक संसार के नाम गुण या यहाँ के रूप को चर्चा करने में लग जाता है तो फिर वो सीधे उसके प्रति रिएक्ट करता है। मतलब उसका जैसा वो फल सोचता है उसके ठीक विपरीत फल उसको मिलता है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा, उतना ज़्यादा सुखी नहीं हो पाता है, वो दुख उल्टे उसका पड़ता है। तो हम लोग हर रोज गाते भी हैं यहाँ पे, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भकते सदमा। तो गुरु के चरण कमलों में क्या प्रार्थना करनी होती है? केवल भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति, ये सीखना होता है गुरु से, कुछ और नहीं सीखना होता है। केवल भक्ति सदमा वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसाद भाई हे भवा तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हाय जाय ते। तो जब उनकी कृपा मिलेगी तो क्या होगा? संसार का जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा। जहर प्रसाद भाई हे भवा तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होई जहां होते, कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण प्राप्त होने पे होता क्या है? कृष्ण प्राप्त होने पे केवल आनंद ही होता है, बस और कुछ नहीं। कृष्ण की सेवा करने पे, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में, जैसे सूर्य है, कृष्ण सूर्य से वहां माया है अंधकार, कृष्ण जो है सूर्य के समान है। सूर्य के नजदीक जितना जाएंगे क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा और रोशनी बढ़ेगी। सूर्य के पास जाकर के ऐसा नहीं है कि व्यक्ति और ठंडा पड़ते चला जाएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति कृष्ण के जितना नजदीक जा रहा है, कृष्ण जो है सच्चिदानंद है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो वो व्यक्ति भी सच्चिदानंद होते चला जाएगा, उसका भी आनंद बढ़ेगा, उसका भी दिव्य ज्ञान बढ़ेगा। तो यही इसी की आकांक्षा, इसी की लालसा जो है भक्तों गुरु से रहती है कि कैसे दिव्य ज्ञान बढ़े। तो वो होता है कैसे? कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उसके जितना ज़्यादा नज़दीक पहुँचता है उतना ही ज़्यादा वो सुखी होते चला जाता है। तो इस श्लोक में खैर भागवतम में इस संबंध में एक श्लोक आता है जो कि पहले स्कंद में द्रौपदी च तदज्ञाय पति नाम अनपेक्षतम वासुदेव भगवती एकांत मतिराम्तम, जैसे कि यहाँ पे है और व्यक्ति सोचेगा कि मृत्यु के वक्त सारा खेल हो जाएगा, मैं हो जाएगा सब कुछ कृष्ण का स्मरण, ऐसा होता है क्या? प्रभात जी ये द्रौपदी च तदज्ञा इसके श्लोक में बताते हैं कि द्रौपदी और जो सुभद्रा थी इन्होंने देखा कि उनके जो पांच पति है वो निकल गए कृष्ण के जाने के बाद, वो भी निकल गए एक एक करके, और उन्होंने इनकी प्रतीक्षा भी नहीं की, उन्होंने देखा नहीं कि ये लोग भी आए या कुछ इनके प्रति भाव, वो निकल गए। और लेकिन द्रौपदी और जो सुभद्रा थे वो बहुत ज्यादा अभ्यस्त थे, वो अभ्यस्त थे किसमें, कैसे कृष्ण को स्मरण किया जाए, इसमें अभ्यस्त थे। तो इसीलिए उन्होंने जो पहले सुना था, जो पहले अभ्यास किया था, उसका फिर मनन चिंतन किया, उसको अपने जीवन में लाया और फिर वो भी उसी गति को प्राप्त किए जो उनके महान पत्नी ने प्राप्त किया। वहाँ पे प्रभात जी लिखते हैं कि सभी को अपना विमान उड़ाना है। जब विमान जमीन के ऊपर होती है तो फिर सहायता ली जा सकती है। किससे सहायता ली जा सकती है? गुरु से सहायता ली जा सकती है, रिश्तेदार से सहायता ली जा सकती है, पिता से सहायता ली जा सकती है, माता, किसी से भी सहायता ली जा सकती है। जो विमान नीचे है, हमारा जो विमान अभी है मृत्यु के वक्त नहीं, उस वक्त विमान अपना विमान उड़ाना है। तो इसीलिए इससे पहले कि वो अंतिम समय आए, इस बात को भली भांति सीख लेना चाहिए कि कैसे विमान को अंत काल में उड़ाना है। तो उसका निरूपण यहाँ पे हुआ है इसी अध्याय में, केवल्या भक्ति। और ये जो भागवतम है ये क्या है, ये जो छठा स्कंद क्या है, पोषण है। पोषण कैसे भगवान संरक्षण करते हैं, पहले ही अध्याय में बता दिए। यहाँ पे कृपा जी लिखते हैं, यह भागवत पुराण नहीं आने, पूरे श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन मिलता है, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण होता है, जिनमें सृष्टि परवर्ती सृष्टि तथा लोक सम्मिलित है। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी पहले ही तृतीय चतुर्थ तथा पंचम स्कंदों में सृष्टि परवर्ती सृष्टि तथा लोक प्रणालियों का वर्णन कर चुके हैं। अब इस छठे स्कंद में जिसमें 19 अध्याय वे पोषण अर्थात भगवान द्वारा संरक्षण का वर्णन करेंगे। तो ये संरक्षण कैसे भगवान करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये तपसा ब्रह्मचर्य करके या प्रायश्चित करके ये सब करके जीव का संरक्षण नहीं हो पाता, वो पापों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इस संरक्षण के संबंध में सबसे पहली उक्ति किसकी आती है, अजामिल की आती है। अजामिल उपाख्यान में किसके बारे में बताया गया, कैसे संरक्षण हो रहा है भक्त का, भगवान के नाम से संरक्षण हो रहा है। तो भगवान के नाम से को लेने से अजामिल पूरी तरह से संरक्षित थे। हालांकि वो उनके बारे में बताया है यहीं पे कि तपस्या ब्रह्मचर्य, जैसे यहाँ पे ब्रह्मचर्य इत्यादि के बारे में तपस्या ब्रह्मचर्य ने समय चंद्र मैंने चाह, ब्राह्मण के भी वैसे जो जितने भी गुण है वो सभी उनके अंदर थे, ब्राह्मण के भी गुण थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा शूद्र शूद्रानी को देखा संग करते हुए एक दूसरे का, तो उनका उनके मन में फिर वही भाव आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आगे चल करके अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और नारायण का ही नाम उच्चारण करने लगे। ये अजामिल के बारे में बताया गया कि इनके अंदर भी पूरे ब्राह्मण के लक्षण थे, गुरु के अच्छे से सेवा भी कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे बताया हुआ जैसे कि तपसा ब्रह्मचर्य ने शमेन च दमेन में कि वो नाम भी लेता है, नाम भी ले रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी तरह से पापों से मुक्त नहीं हो रहा है, जड़ समेत नहीं मुक्त हो रहा है। यहाँ पे खैर मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ इधर है, स्वच्छ तथा हिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए तपसा ब्रह्मचर्य ने वाले श्लोक में। लेकिन उसके बाद भी जड़ जो है अभी भी है, ठीक है। तो ज्ञान मिश्र भक्ति जब हो जाती है तो उसमें भी क्या बोलते हैं, जड़ कुछ ना कुछ रह सकता है। केवल केवल्या भक्ति में जड़ समेत जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण और सबसे पहले ही इसी स्कंद में ही कह दिया गया, कृष्ण के नाम से वो संरक्षण होता है। म्रियमाणो हरे नाम ग्रणन पुत्र प्रचारितम अजामिलोपि गाधाम क्यूमुत श्रद्धया ग्रणन। अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारने के लिए नाम का उच्चारण किया, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ उसको, जो विष्णु दूत है उन्होंने बचा दिया। और कोई अगर श्रद्धा के साथ कृष्ण का नाम लेता है तो फिर क्या होगा, तो उसकी तो और भी ज्यादा भक्ति बढ़ेगी, कृष्ण में प्रेम आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे समय हो गया, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक श्लोक में ये भी कहा गया, जगदानंद पंडित के लिखते हैं शिव प्रेम वर्त में, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीनीते आर कोनो वस्तु नहीं। साधुओं के संग में क्या चाहिए, इसी के संबंध में आगे चल करके बताया गया, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, साधुओं के संग में केवल एक मात्र चीज चाहिए, कृष्ण का नाम। संसार को जीतने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, संसार जीनीते आर कोनो वस्तु नहीं। तो कोई प्रश्न है, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय।